ओम शांति। मुरली, मुरली कैसे सुननी चाहिए, कौन बताएगा? दिल से सुन, आत्मा बन के। और कैसे सुनना चाहिए मुरली? होशियार स्टूडेंट कैसा होता है? होशियार स्टूडेंट जी, जगह हुआ, सोता नहीं है, झुटका आदि नहीं लेता है। बहुत अच्छा। बहुत बहुत चात्रक। और सजनी, उस समय तो स्टूडेंट बनना है पहले, नहीं? ये भी अच्छा वैसे। और बाबा ने जो विधि बताई है, बाबा ने बताया मुरली कैसे सुने? बाबा ने जो विधि बताई है मुरली सुनते समय, जो भी हम सुनते हैं है ना, उसको क्या करना है? उसका स्वरूप बन के देखना, देखना है उसको। जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, प्राय आप देखेंगे दुनिया में भी, कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आपके पास की है, की यहां रखते हैं ना, फिर भूल जाते कहां मैंने रखा, फिर ढूंढते रहते, तो भूलने की बीमारी बहुत हो गई। क्यों? क्योंकि रखते हैं, कोई भी चीज यहां रखते हैं ना, रखते हैं बट देखते कहीं और है, टेबल पर रख रहे हैं और देखा नहीं और आपने रखा, तो इसके भूलने की चांसेस ज्यादा है। इसीलिए क्या कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो कैसे करो? ध्यान से। ध्यान से मीन्स देखते हुए उसको, अटेंशन से। तो कोई भी चीज अगर आप रख रहे हैं कहीं भी, तो एक बार उसको देख लीजिए कहां रख रहा हूं। तो जब आप रखते हुए और देख रहे हैं उसको ना, तो भले आपको भूल जाएगा ना कहां रखा था, लेकिन याद आएगा। जब आप याद करेंगे ना कहां, तो वो याद आएगा कहां रखा था। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखते हुए रखेंगे तो भूलने के चांसेस बहुत कम है, कोई भी चीज ऐसे रख रहे। लेकिन अगर देख नहीं रहे, देख रहे हैं कहीं और रख रहे हैं कहीं और, है ना? तो इसीलिए बाबा ने बताया मुरली में, जैसे हम मुरली सुनते हैं और मुरली के केवल शब्द पर फोकस है ना, केवल मुरली के शब्द पर हमारा ध्यान है ना, तो उसमें भी क्या होता है, कई बार हम उसके भाव को नहीं समझ सकते है ना। हम कई बार रिपीट करेंगे कि बाबा ने मुरली में ये तो कहा था, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि उसका भाव क्या है, उस समय क्या सिचुएशन थी, उनके सामने कौन है। तो जरूरी नहीं है कि वो जो एकदम शब्द आप उसको रिपीट करो और वही आपके काम आ जाए, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भाव को देखो, केवल शब्दों को नहीं पकड़ो। तो इसीलिए बाबा ने जो मुरली सुनने की विधि बताई है कि उसको देखते जाओ, जस्ट जो ही आप मुरली सुन रहे हैं ना, उसको फील करते जाओ, उसका स्वरूप एम्बोडीमेंट उसका बन जाइए। जैसे बाबा ने कहा अमरनाथ, अमरनाथ कहा तो क्या करना है, अमरनाथ दिखाई दे। जो भी बाबा कह रहे हैं ना, जब बाबा कहते हैं अभी देवी देवता थे सतयुग में, तो उसी समय देवी देवताएं दिखाई दे, मेरा स्वरूप दिखाई दे कि मैं ही देवी देवता था। तो बाबा जो भी कर रहे ना, उसे हमें उसी टाइम फील करना, रियलाइज करना, उसका स्वरूप बन जाना। तो अगर ऐसे आप मुरली सुनेंगे तो मेहनत नहीं होगी आपको, मुरली बहुत याद रहेगी, फिर आप इंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जब भी हम मुरली सुने उसको दृश्य के रूप में, विजन के रूप में देखें, तुरंत विजुअलाइज करें, तो आप भूलेंगे नहीं, वो शब्द भूल जाएंगे लेकिन उसका भाव क्या है वो आपको याद रहेगा। तो इसीलिए मुरली जब भी सुनते हैं उसके साथ साथ उसको देखें, उसको फील करें। कभी भी, तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, योग की सिद्धि अर्थात क्या, ऐसा नहीं हम परम धाम में बैठ गए, केवल हम बैठे हैं परम धाम में, ये इजी है। केवल परम धाम में बैठना इजी है, सूक्ष्मतन बैठना इजी है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, एक सेकंड में है ना, और जहां भी टिकना चाहे, बुद्धि को टिकाना चाहे, और जितना देर तक उसमें स्थित हो सके। तो योग करना सहज है, बट जिस समय चाहिए, जितना समय चाहिए, और एक सेकंड में उसमें स्थित होना, इसके लिए अभ्यास चाहिए। तो इसीलिए जब मुरली सुने तो मुरली शब्द नहीं सुने, उसको विजुअलाइज करते जाएं, देखते जाएं। जो भी बाबा ने कहा सोमनाथ, सोमनाथ दिखाई दे। सतयुग बाबा ने कहा सतयुग दृश्य के रूप में दिखे, देवी देवताएं कैसा स्वरूप है ना, रावण राज इस समय कैसा चल रहा है, उसको देखे, दिखाई दे। तो शब्द नहीं, जब भी सुने विजुअलाइज करें, उसका स्वरूप बन जाए, फिर आपको मुरली याद नहीं करना पड़ेगा। शब्द आप रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन भाव अंदर उतर जाएगा मुरली का। तो इसलिए जब भी अभी मुरली सुने, तो ये बाबा ने विधि बताई कि मुरली सुनते जाओ, उसका अनुभव करते जाओ, तो आपको मुरली भूल ही नहीं सकती। तो जैसा कि बाबा ने आज बताया, डबल विदेशी बच्चों की विशेषताएं। तो डबल विदेशी किसे कहते हैं, मालूम तो है ना सबको। इंडिया से दूसरे, बाकी जो भारत में रहते हैं वो डबल विदेशी नहीं है, क्यों? लेकिन अगर देखें रावण राज्य है उसके हिसाब से, अगर रावण राज्य के हिसाब से देखें, इसीलिए बाबा की जो भी मुरली चलती है ना, वो हर एक के लिए होती है पर्टिकुलर। हम ये नहीं सोच सकते कि हम भारतवासी हैं या डबल विदेशी बच्चों के लिए। डबल विदेशी मीन्स हमारे लिए भी लागू होती, हम भी डबल विदेशी हो जाते हैं। परम धाम छूटा और भारत में भी हमारा देश कहाँ था, सतयुग में था ना, देवी देवताएं जब थे। अभी इसके बाद तो रावण राज्य हो गया ना, तो हम भी विदेशी हो जाते हैं। इस हिसाब से देखें तो हम भी डबल विदेशी हैं। तो इसलिए इस भाव से भी हमें मुरली सुननी है। और इसी तरह बाबा की दो रचना है, दो प्रकार की रचना है। दो प्रकार की रचना कौन सी, होने के बाद मन की जी। तो इसीलिए कहते हैं एक मुख वंशावली है ना, जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, और दूसरे जो संकल्पों से है ना, बाबा ने याद किया जिनके लिए, आह्वान किया जिसका। तो जो सम्मुख थे, जिनको सम्मुख बाबा ने अनुभव कराया या ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, दूसरे हैं जिनको संकल्पों के आधार पर क्रिएट किया बाबा ने। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, सही है, लेकिन जो मुख वंशावली कहते हैं है ना, मुख वंशावली में क्या है कि सम्मुख जब किसी को ज्ञान देते हैं ना, इस मुख के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, तो जो मुख के द्वारा ज्ञान देते हैं ना, तो कोई भी क्लियर समझ सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ पूछ भी सकता है, कुछ बता भी सकते हैं, है ना? क्योंकि ये दुनिया किसकी है? टाकी है ना? तो यहां टाकी बातचीत को हम बहुत सहज समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा जो संकल्पों की रचना है, तो संकल्पों में क्या होता है, मिक्सचरिटी भी होती है ना कई बार। लेकिन जो मुख वंशावली है उनका भाग्य रियली देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। इसलिए बाबा ने कहा है कि जो संकल्पों की रचना है ना, जिनको बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो ज्ञान में आए, बाबा ने कहा उनको बाबा कितना एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं मालूम है? देर से आने वालों को 25% मार्क्स बाबा एक्स्ट्रा दे देते हैं स्वतः, जो देर से आए। लेकिन उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना? नहीं तो जितना पुरुषार्थ करेंगे ना उतने का ही 25%। ऐसा नहीं कि 25% आपको मिल गया और, है ना? तो ये जो संकल्पों की रचना है ना बाबा की, तो डबल विदेशी अर्थात जिनका बाबा ने आह्वान किया और बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो ब्राह्मण बने, है ना? तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, जो भाषा है ना सबसे बड़ी, है ना, सबसे पावरफुल लैंग्वेज कौन सी है? संकल्पों की। संकल्पों में क्या करते हैं? संकल्प अर्थात कैसे यूज करते हैं संकल्प को? वाइब्रेशंस। और क्या बाबा ने कहा? रू रिहान, है ना? तो रू रिहान अर्थात, रू रिहान अर्थात, हाँ तो बहुत ही जीवन रूह रिहान अर्थात रूह जब रूह से बात करती है ना। आप कई बार देखेंगे कि आप कई बार सोच रहे होते ना कि ये मिलेंगे ना तो इनसे ये बात करेंगे, उस समय आपकी भाव, आपकी भावना सब बहुत अच्छी है, हमको उनको ये भी बताना, ये भी बताना, बहुत अच्छे अच्छे आपके अंदर भावनाएं आएंगी जब किसी को याद करके आप बात कर रहे हैं तो। लेकिन जो ही वो सम्मुख आ जाते हैं आपके ना, और फिर जब आप बात करते हैं तो क्या हो जाता है? मिक्सचर। मिक्सचर क्या हो जाता है? क्योंकि हमें देह दिखाई देता है ना, तो देह को देखना ये भी क्या हो गया? मिक्स हो गया। तो जो हम सोच रहे थे या हम चिंतन कर रहे थे या हम संकल्पों से ही बात कर रहे थे, तो वो जो हमारी पावर थी ना वो इस समय नहीं रहेगी, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, है ना? जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे बताएं, सहज एग्जाम्पल, आप किसी को कहो कि भगवान है, वो परम धाम में है, ब्रह्मांड में रहता है, किसी को भी कहिए तो किसी को क्वेश्चन नहीं होगा, हरे क्या कहेगा? हाँ वो तो है, ब्रह्मांड में है परमात्मा, किसी को डाउट नहीं है। लेकिन जो ही आप किसी को कहेंगे कि परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, चाहे दादी के तन में आते हैं, यहां से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? देह में जब हम बात करते हैं ना, देह में आते हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब आप देह में रहते हैं ना तो आपके ऊपर क्या उत्पन्न हो जाता है? संदेह। जब देह में रहते हैं ना तो डाउट्स उत्पन्न हो जाते हैं किसी के लिए भी। हम देह अभिमान में रह के किसी को ज्ञान सुनाए तो डाउट्स। तो जो ही हम देह की बात करते हैं कि परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, तो सोचिए जो नंबर वन है तो भी डाउट्स उत्पन्न हो। भगवान भी देह में आ रहा है तो भगवान पे भी डाउट हो जाता है। तो सोचिए जब भगवान देह में आते हैं तो भगवान पे भी डाउट्स है, तो हम लोग कहां रहते हैं? देह में ही रहते हैं ना। तो हम लोगों पर कितना कोई विश्वास करेगा बताइए, है ना। तो इसीलिए जब हम अपने को रूह समझते, इसीलिए कहा बाबा ने रूह रिहान, है ना। जब हम खुद को भी रूह समझते हैं और फिर सम्मुख किसी रूह को इमर्ज करते हैं, तो रूह, अगर आप खुद को आत्मा समझते हैं ना, किसी से भी अगर आपको संबंध ठीक भी करना है, कोई आपसे नाराज हो गया है और आपको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तो मान लीजिए अगर आप ऐसे सुनाएंगे ना, तो और ही वैमनस्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप रूह समझ करके, बाबा की याद में रह करके, उस आत्मा को इमर्ज करके, आत्मा को सम्मुख रख के आप रूह ध्यान करते हैं, तो क्या होगा, ये जो आपके वाइब्रेशंस है ना, डायरेक्ट उस आत्मा पर वर्क करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, रू रिहान, संकल्पों की भाषा सबसे पावरफुल है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, लेकिन इसमें क्या बाबा ने बताया कि संकल्पों की भाषा को यूज करने के लिए या कैच करने के लिए क्या चाहिए, सूक्ष्म। यदि हम सूक्ष्म सटल पावर है तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। इसका एक एग्जांपल बताएं, जैसे कैरेबियन में रहती हैं हेमलता दीदी, रहती हैं कैरेबियन कंट्री में, तो उनके पास एक भाई आया, वो थॉट रीडर था। थॉट रीडर, कोई भी क्या सोच रहा है ना, वो कैच कर लेता था। तो उनको बोला कि अभी आप सोच रही हैं, जो वहां बहन खड़ी थी उनको, कि ये भाई को हम क्या गिफ्ट दें, इसको किस वाले बॉक्स में टोली रखें इसके लिए, वो एक एक बात इतना बताने लगा ना, लास्ट में उसने कहा, अभी आप सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से यहां से चला जाऊं, क्योंकि बहन परेशान हो गई ना, ये तो हर एक संकल्प कैच कर रहा है, यही सुना रही थी क्लास में। तो सूर्य भाई जी थे उस समय क्लास में, तो भाई जी ने कहा कितना अच्छा होता अगर उसी समय वो बाबा को याद करती बहन, तो वो किसको कैच करता, कि अभी आप एक बिंदु को याद कर रहे हैं ना, इससे करके। तो ये हो जाता है संकल्पों का, जब हम रूह समझ करके और किसी को रूह देखते हैं या उससे बात करते हैं, संकल्प क्रिएट करते हैं, तो ये रूह से रूह पर बहुत तेजी से काम करता है। लेकिन जो ही हम देह भान में आते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है। लेकिन संकल्पों की भाषा है ना, संकल्प, जैसे मान लीजिए किसी का संकल्प कैच करना है, कैसे कैच करेंगे, बातचीत में सम्मुख तो हम बात करते हैं, टॉके में है, लेकिन संकल्प कैसे कैच करें, संकल्प अर्थात हमारे अंदर दूसरे कोई संकल्प नहीं हो। जब हम निर्संकल्प होंगे ना, तब हम दूसरे के भाव को पकड़ सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि आपके पास जितने संकल्प कम, उतना आप किसी के मन के भाव को जान सकते हैं। क्योंकि आजकल किसी को पूछेंगे ना, आपकी क्या समस्या है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा इस समय अपने प्रश्नों को भी वो व्यक्त नहीं कर पा रहे, उन्हें खुद ही नहीं पता है मेरा प्रश्न क्या है। क्योंकि कहते हैं कि सही प्रश्न उत्पन्न होना भी, अगर किसी का सही प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तो सही प्रश्न उत्पन्न होना भी क्या है, आधा उन आंसर समझे मिल गया। तो सही प्रश्न क्रिएट करना भी है ना। तो इसीलिए संकल्पों की भाषा अर्थात कैच करना, अर्थात हमारे अंदर संकल्प ना हो, हम न्यूट्रल हो, हमारा कुछ अपना उससे न्यूट्रल है ना। इसीलिए क्या दिखाते हैं, जो जज दिखाते हैं ना, जज जब बैठता है तो जज को क्या दिखाते हैं, क्या पीछे निशान होता है आंख पे, क्या बता होता है, पट्टी। क्यों बनती है आंख पट्टी, क्योंकि जज को यह ना दिखाई दे कि हमारे इधर कौन खड़ा है, इधर कौन खड़ा है, नहीं तो ये तो कहेगा ये तो हमारा, ये तो हमारे चाचा का लड़का है ना, तो क्या करेगा कोई, थोड़ा फेवर करेगा ना। तो इसलिए जज मिस उसे दिखाई ना दे कि कौन है, तब वो सही फैसला कर सकता है, सही जजमेंट कर सकता है। इसलिए आंख बंद होनी चाहिए, आपको प्रश्न मालूम होने चाहिए कि किसके क्या प्रश्न है ना। तो ये इतना हम जब न्यूट्रल होंगे, इतना संकल्पों से रहित, हमारी कोई अपेक्षा नहीं है कि इनका यही संकल्प, हमको यह भी नहीं होना चाहिए कि इनका यही संकल्प होना चाहिए, हम न्यूट्रल बिल्कुल, जिसका जो है बट मैं न्यूट्रल। जब एकदम न्यूट्रल हूं ना मैं, तब मैं दूसरे के संकल्पों को कैच कर सकता हूं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि रू रिहान है ना। तो इस तरह से हम किसी भी रू से बातचीत कर सकते हैं, किसी भी रू को समझा सकते हैं। तो ये संकल्पों की भाषा पर हमें बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि हम रचनाएं किसकी हैं, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा की रचना है ना, साकार बाबा के पास। तो इसलिए संकल्प हम लोगों पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, जो बाद में आए। दूसरी बात और क्या होती है कि जो बाद में आने वाली आत्मा होती है, जितना बाद में आएगी ना उतना वीक होने की संभावना है। हाँ, बाबा कहते हैं कि लास्ट ऑफ फास्ट, ये भी कहते हैं, लेकिन वो कोई कोई होगा। और एक बार गुलजार दादी ने यही कहा था, मुझे याद रहता है, दादी ने कहा कि लोग कहते हैं कि लास्ट ऑफ फास्ट, लेकिन हम लोग भी तो बैठे नहीं हैं, है ना। दादी ने कहा हम भी तो बैठे नहीं है ना, जो पुरानी आत्मा है वो भी तो पुरुषार्थ कर रही है ना अपना, है ना। तो इतना जब हमारा फुल अटेंशन होगा तब हम ये पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो इस समय हमारा सारा फोकस होना चाहिए हम कैसे अपने संकल्पों को कम कर सकें। जितने हमारे संकल्प कम, यही इस समय सारा एफर्ट होना चाहिए। जितने संकल्प कम उतने पावरफुल, जितने समर्थ संकल्प उतने पावरफुल समर्थ, और जितने व्यर्थ संकल्प उतने कमजोर। तो व्यर्थ हमें कमजोर बना देगा, समर्थ हमें शक्तिशाली बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। और समर्थ क्या होता है, समर्थ की क्वालिटी, जो समर्थ संकल्प होते हैं बहुत कम होते हैं, व्यर्थ बहुत ज्यादा, उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा, और समर्थ संकल्प के स्पीड बहुत स्लो। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में तो यहां तक कहा है कि वास्तविक योग अर्थात और कोई संकल्प ही ना हो, कोई संकल्प नहीं, जस्ट बाबा और मैं। अगर संकल्प और है तो बाबा ने कहा वो सेमी योग हो गया। तो इतना हमें संकल्पों पर ध्यान देना है। और संकल्प के लिए बाबा ने क्या कहा कि जितने आपके संकल्प दृढ़ है ना, जितने दृढ़ संकल्प होंगे उतना क्या होगा, सफलता मिलेगी। दृढ़ संकल्प से क्यों सफलता मिल जाएगी? दृढ़ संकल्प अर्थात निश्चय बुद्धि। अगर निश्चय नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प किसको कहेंगे? प्रैक्टिकल में आप अच्छा तो ये बताइए, जब हम मुरली सुनते हैं तो जो भी बातें हम यूज करते हैं, जो भी महावाक्य या कहीं भी समाधान के लिए भी, तो हम केवल मुरली से ही समाधान ढूंढते हैं कि और भी कहीं कुछ मिले तो ले लेते हैं? केवल मुरली से, और कोई प्रभावित नहीं करता ना? और कोई प्रभावित नहीं करता है? हम किसी का रेफरेंस नहीं देते हैं? तो क्या होगा? जिसके पास दृढ़ता है, जिसके पास दृढ़ नहीं है वो क्या करेगा? जिसके पास दृढ़ संकल्प है ना, वो क्या करेगा? चल दिया ना, बाबा ने कहा ना, वो चल दिया, आंख बंद करके चल दिया, बाबा ने कर दिया, इस रास्ते पर चल दिया। लेकिन जिसके दृढ़ संकल्प नहीं होंगे ना, दृढ़ संकल्प किसका नहीं हुआ? थोड़ा डाउट्स हो गया ना, पता नहीं वहां तक जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर दूसरे रास्ते पर जाएगा, लौट के आएगा, तो न वो इधर पहुंचेगा न इधर पहुंचेगा, क्योंकि जा रहा है और आ रहा है, बीच से लौट आ रहा है ना। तो दृढ़ संकल्प अर्थात बाबा ने जो कहा हमें उसे ही फॉलो करना है ना। जैसे दिखाते हैं ना कि बाबा ने, कोई दादियां थी, बाबा ने कहा कि ये जो बड़ी खटिया है ना, बड़ी खटिया को कहां डालो? छोटी खटिया के अंदर डाल दो। तो दादी ने कहा, कोई दादी उस समय रही होंगी, कि बाबा ये कैसे हो सकता है, ये खटिया तो बड़ी है और ये खटिया छोटी है। तो मम्मा वहां थी, मम्मा ने कहा किसने कहा है तुमको ये बात? बाबा कह रहे ना, इसलिए छोटी खटिया के नीचे बड़ी खटिया को डालो। ये क्या है? समर्पित बुद्धि है ना, इतनी दृढ़ता कि बाबा जो कह रहे ना, बस इसके बाद ना हमारे कोई विचार, ना हमारा कोई संकल्प, ये है दृढ़ता। हमारा कोई संकल्प भी न चले, बाबा ने कह दिया बस वही, ये दृढ़ता है ना। मम्मा का और भी तो दिखाते हैं ना, जो अंडे के लिए दिखाते हैं ना, उसके लिए क्या किया मम्मा ने? उसके लिए भी अपना मुंह खोल दिया। तो इतना समर्पित बुद्धि, नहीं तो हम थोड़ा तो बुद्धि चलाएंगे ना, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा जितना अब दृढ़ है ना, इवन बाहर दुनिया में भी जो उल्टे सुलटे काम करते हैं ना, वो भी दृढ़ता के आधार पर बहुत कुछ कर लेते हैं। तो दृढ़ संकल्प अर्थात एक पर निश्चय हो, निश्चय हिले नहीं, और निश्चय नहीं हिलता है जब हम एक ही संकल्प में स्थिर रहते हैं। कभी भी एक ही संकल्प पे अगर हम स्थिर हैं तो कभी हमें हमारा निश्चय नहीं हिलेगा। इसी प्रकार अगर कोई डाउट वाला व्यक्ति भी है ना, सम्मुख कोई डाउट वाला व्यक्ति, लेकिन उसके लिए हमारा फोकस है कि आत्मा बहुत अच्छी है, बार बार हम इसी भावना से देखते हैं कि बहुत विशेष है, तो ये जो हमारी विशेष संकल्प उसको बार बार जा रहे हैं ना, वो उस आत्मा को भी वैसा ही बना देंगे, ये उसके लिए हमारा वरदान हो जाएगा। लेकिन यदि कोई बहुत पावरफुल भी है, विशेष भी है, और उसके लिए भी हम वीक संकल्प करते हैं ना, तो क्या हो जाता है? उसके अंदर डाउट्स आ जाएंगे, उसका उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी किसकी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आप संकल्प सदैव श्रेष्ठ रखो, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा ना कि आप बच्चों को बाबा ने क्यों चुना, आपका भाग्य इतना विशेष भाग्य रहा, आप में बाबा ने क्या देखी, विशेषता देखी, तो विशेषता के आधार पर बाबा ने सेलेक्ट किया। लेकिन बाबा ने और एक बात क्या कहा कि विशेषता है, आप विशेषता के आधार पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात क्या और कहा बाबा ने, वरदान। अगर वरदान है तो क्या होता है, वरदान के आधार पर कोई सेवा करते हैं तो आपको मेहनत नहीं लगती है, तो हम सबको बाबा ने क्या किया, वरदान भी दे दिया है, है ना। तो जहां तक पुरुषार्थ की बात है, बाबा इसलिए क्या कहते हैं, मेन पुरुषार्थ क्या है हमारा, अपने को योग्य बनाना ना। जब हम योग्य बनेंगे तभी हम सेवा कर सकते हैं, अगर हम योग्य नहीं है तो हम कहीं भी सेवा में जाएंगे करने तो क्या हो जाएंगे, विघ्न बन जाएंगे, उसके लिए विघ्न बन जाएंगे। इसलिए हमें योग्यता लानी, तो अपने अंदर योग्यता कैसे लाना है, इस संकल्पों पर ही फोकस रखना है। संकल्पों पर अगर ध्यान है, समर्थ संकल्प है, तो हम पावरफुल हो जाएंगे, हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार इस मुरली भी नहीं है लेकिन इसी मुरली से कनेक्टेड है, तो ये याद रहेगा आपको, जैसे बाबा ने कहा एक ऐसी धारणा है जिसमें सभी धारणाएं आ जाती है, एक धारणा है। जब हम बिंदु समझते हैं खुद को, बाबा ने कहा जब हम स्वयं को बिंदु समझते हैं और फिर बिंदु रूप में बाबा को याद करते हैं, बिंदु समझकर बिंदु रूप में बाबा को याद करते हैं, तो इसमें क्या है, सभी धारणा आ जाती है, कोई धारणा बाकी नहीं रहता। ऐसे ही बाबा ने कहा एक लाइन और है एक महावाक्य बाबा के, कि एक पुरुषार्थ ऐसा है जिसमें चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं, आपको एक काम केवल करना है, एक ही काम करना है, उसमें उसमें चारों ही सब्जेक्ट हैं, और वो सबसे फर्स्ट क्लास, सबसे सहज। ये दादी प्रकाश मणि से बाबा ने भी पूछा था, हमको याद रहता है डायमंड हाल में, कि दादी, दादी के सही छोड़ने से शायद 2 साल पहले बाबा ने पूछा, दादी सबसे फर्स्ट क्लास और सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है, याद आया, दुआएं दो दुआएं लो। बाबा ने कहा सबसे सहज और सबसे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ दुआएं दो दुआएं लो। तो बाबा ने कहा अगर ये आप अभ्यास करते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो बाबा ने कहा कि इसमें चारों ही सब्जेक्ट आ जाता है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें योग भी है, इसमें धारणा भी है, इसमें सेवा भी है। तो कोई यदि ऐसा है जिसको योग नहीं लगता है, केवल अगर वो केवल ये ठान ले ना कि जिसको भी हमें देखना है ना उसको दुआएं देना है, इसमें आपका सब कुछ हो गया। क्यों, आप दाता बन गए, हमेशा दे रहे ना, दाता, दाता मीन्स दाता कौन है, भगवान बाबा, और आप भी वही दे रहे, तो आप किसकी लिस्ट में आ गए, देने वाले की लिस्ट में, है ना, लेने वाले में तो नहीं, देने वाला कौन, बाबा, तो आपका कंपेयर किससे हो गया, बाबा से, तो आप मास्टर भगवान बन जाते ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि इसमें चारों ही सब्जेक्ट आ जाता है, दुआएं देना और दुआएं लेना, हर एक के लिए इतनी हमारी भावना श्रेष्ठ हो जाए, इतना श्रेष्ठ संकल्प हो जाए, तो इसीलिए अगर किसी का योग नहीं लगता है, अगर किसी के लिए हमेशा वो जो है दुआएं रखता है, तो देखिए कैसे योग लगता है। इसीलिए कहते हैं कि दिन रात जो सेवा में गुजारे है ना, शिव बाबा को लगते प्यारे। मतलब क्या हुआ कि भगवान भी उसे याद करता है। आप अगर विश्व के निर्माण का कार्य करते हैं, किसी के परिवर्तन में सहयोगी बनते हैं, तो बाबा भी देखते हैं ना, ये तो मेरा कार्य कर रहा है, तो भगवान भी तो याद करता है ना आपको। तो इसीलिए बाबा ने कहा दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें क्या आ जाता है, चारों ही सब्जेक्ट है। तो किसी को बैलेंस्ड लाइफ लेनी है तो इसका प्रैक्टिस करना है, ये दो बातें। सभी धारणाएं आ जाए उसके लिए बिंदु बनकर बिंदु रूप में याद कर। बाबा ने यहां तक कहा था कि कोई संत महात्मा कहीं बैठे हो पहाड़ों में भी, और उनको वो भी केवल इतना समझ के याद करें ना, तो उनके भी बहुत सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और बाबा ने क्या कहा, बंधन है ना, बंधन किस में होता है, बंधन किसको कहेंगे, बंधन और किसको कहेंगे निर्बंधन, बेहद में निर्बंधन और हद में। एग्जाम्पल बताइए कोई। देखिए हद और बेहद में क्या अंतर हो जाता है, जैसे मान लीजिए हद, ये भी कंपेयर में आ जाता है ना, कंपेयर में आता। जैसे मान लीजिए किसी को कहें कि आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल होगा, इसी हाल में रहना, लेकिन आपको इतने सालों तक किसी में रहना, इससे बाहर नहीं जाना है, ये क्या हो गया, बंधन हो गया ना। और भी घटा सकते हैं, अभी इतने दूर में आपको रहना है। और बेहद में कहें पूरे धरती पर आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं हद और बेहद। जब हम हद में आते हैं, जितना हद में आते हैं उतना हम पाप की ओर अग्रसर होते हैं, उतना दुख की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जितना बेहद में उतना हम पुण्य की तरफ, उतना हमारा जो है चैरिटी, हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। जो हद में रहने वाले हैं ना, समस्या कौन बनते हैं, बाबा ने कहा समाधान किसमें है, बेहद में। जब आप बेहद में जाते हैं तो समाधान है, हद में आते हैं तो समस्या हो जाता है, है ना। जैसे आप कोई सेवा दे दिया है कि हमको ये मिला केवल टेबल सफाई करने का इधर उधर, तो हम यहां देखेंगे अच्छा हमको तो टेबल क्या मिला, इनको क्या मिला, इनको तो ये मिला, अब हम कंपेयर करेंगे, है ना, इनको तो बढ़िया सेवा मिल गई, हमको तो ये मिल गई, हम कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा ना कंपेयर, ये क्या हो गया, हद की बुद्धि की निशानी, क्योंकि हम यही केवल देख रहे हैं। लेकिन जो बेहद में है, जो ये देखेगा बाबा का कार्य चल रहा है, बाबा को देख रहा है ना, वो क्या है, वो कभी समस्या नहीं बनेगा, है ना। जो देश के बारे में, जो मान लीजिए कोई राजनेता है या कोई अधिकारी है, अगर वो देश को ध्यान में रख के काम करता है, उसका भाव कितना श्रेष्ठ होगा। लेकिन यदि कोई ये सोचता है, अपने परिवार को देखता है, तो वो लोग क्या करते हैं, मान लो कहीं बाढ़ आई है ना, तो सरकार अगर उनके लिए राहत सामग्री भेजेगी कि ये बाढ़ में जो पीड़ित हैं उनको बांटना, वो क्या करेंगे, वो सबसे ज्यादा सामग्री उनकी कहाँ चली जाएगी, उनके घर में, उनके घर में सबसे ज्यादा बाढ़ आई रहती है ना, जो इच्छाओं की बाढ़ है उसको खत्म करने के लिए, उनको भले नहीं देंगे लेकिन उसको बेच करके बहुत सारा थोड़ा सा वहां बांट दिया, बाकी होता नहीं। क्यों ये समस्या क्यों आ गई, हाथ में होने के कारण से, है ना। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे कोई मंदिर बन रहा है वो भी दिखाते हैं, कोई पत्थर तोड़ रहे हैं, तो एक का भाव क्या है, हम पत्थर तोड़ रहे हैं अपना, कितना वो जितना पत्थर तोड़ने में मेहनत है ना, उससे भी ज्यादा थकान कहाँ हो रही है। और एक सोच रहा है बेहद, तो बेहद की भावना आते, तो कार्य वही है, वही सेवा है, हर एक सेवा कर रहा है, क्या केवल परिवर्तन कर देना है, उसको हमको बेहद में लेके जाना है। तो इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जब आप बातों को छोड़ते हैं ना, छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हो, तो क्या होता है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। और जो हम स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं ना, बाबा ने कहा स्वमान आपके पीछे पीछे खुद आते हैं, आपको स्वमान रखने की जरूरत नहीं होती है, स्वतः स्वमान आपके पीछे पीछे है ना। तो हमारा सारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, बेहद में रहना है। यज्ञ में भी किसको देखें हम, बाबा को, यज्ञ को, है ना। अपनी अपनी बातों में उलझे नहीं, छोटी छोटी बातों में, थोड़ा सा त्याग करना पड़े तो त्याग करें, है ना। हम अपने शर्त के आधार पर पुरुषार्थ नहीं, हमको कुछ मिलता है, हाँ अगर हम राइट हैं, कोई इशारा मिल रहा है, हमें नहीं, वैसे हम राइट हैं, लेकिन इशारा मिला कुछ है ना, तो आपने बाबा को सम्मुख रखा ना, उसमें आपका कल्याण हो जाएगा, आप सही हैं, फिर भी आप है ना। तो इसलिए इतना बेहद में कि थोड़ा हमारे झुकने से, थोड़ा हमारे ये होने से, थोड़ा हमारे अलग होने से अगर बेनिफिट हो रहा है यज्ञ को, तो थोड़ा झुक जाना चाहिए, नहीं वो करते हैं तो हम भी करेंगे। तो ये बेहद में रहना, जितना हम बेहद में रहेंगे स्वतः समाधान मिल जाता है, हम समाधान बन जाते हैं। और विशाल दिल, विशाल दिल को भी क्या कहा बाबा ने, बेहद का, यही जो बेहद है, बेहद के स्मृति स्वरूप, हम जब बेहद के स्मृति में रहते हैं, बेहद के स्मृति स्वरूप रहते हैं, है ना, तो यही क्या है, इसी को विशाल दिल कहेंगे। और जब बेहद के स्मृति स्वरूप रहते हैं तो इसमें क्या है, यही कर्मातीत हो जाता है स्थिति, यही फरिश्ता जीवन का अनुभव, क्योंकि अब जितना बेहद में होते हैं ना उतना लाइट, जितना बेहद में रहेंगे इतना लाइट होंगे, और जब लाइट होंगे यही क्या है, कर्मातीत अवस्था, यही फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात लाइट, डबल लाइट है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर बेहद के स्मृति स्वरूप है तो यही है बड़ी दिल, और इसी में आप कर्मातीत बन जाते हैं, या कहें फरिश्ता जीवन का अनुभव इसी में होता है। तो यही बाबा ने क्या कहा, इसी विधि से हमें सिद्धि को प्राप्त करना है। सिद्धि किसे प्राप्त करना है, इसी विधि से, किस विधि से, बस इसी बात पर ध्यान रहे कि हमको बेहद में रहना है। तो जब बेहद के स्मृति स्वरूप होंगे तो क्या हो जाएगा, हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। जब लाइट होंगे तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव या कर्मातीत अवस्था का अनुभव स्वतः होगा। और बाबा ने क्या कहा, संपन्न, संपन्न स्टेज के बारे में बाबा ने कहा, संपन्न स्टेज किसे कहेंगे, आज बाबा ने कहा ना संपन्न स्टेज, हाँ, संकल्प बोल और कर्म, जो तीनों स्टेज है, संकल्प बोल और कर्म, तीनों कैसे हो जाए, तीनों ही श्रेष्ठ, तीनों ही श्रेष्ठ एक जैसे हो जाए, इसे कहेंगे संपन्न स्टेज। प्रायः क्या देखने में आता है कि हमारे संकल्प तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बोल का लेवल, कई बार हमारे बोल बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे का, लेकिन हमारे संकल्प। तो इसीलिए बाबा ने कहा अगर आप संकल्प पे ध्यान देते हैं ना, आपका अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो आपके बोल स्वतः श्रेष्ठ होंगे, बोल स्वतः श्रेष्ठ होंगे, कर्म भी स्वतः श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि संकल्प क्या है, बीज है ना। तो जैसा आप संकल्प करते हैं वैसा बोल भी होगा, कर्म भी होगा, है ना। और बाबा ने बताया इसमें स्वच्छता, है ना, स्वच्छता या स्पष्टता। तो बाबा ने बताया जैसे विदेशी होते हैं ना, डबल फॉरेनर्स जो विदेशी होते हैं, वो कुछ भी बात अपनी ओपन कर देते हैं, वो कुछ उल्टा पुल्टा भी करेंगे ना तो क्लियर बोलेंगे, वो सब बातें बता देते हो अपनी लाइफ में उनको क्या गलती हुई, कहीं भी बोलेंगे उनको, कोई पत्रकार सम्मेलन है कुछ भी है उसमें बता देते हैं। तो बाबा ने कहा है ये क्या है, सच्चाई है ना, सच्चाई है। तो जहां सच्चाई है वहां क्या होता है, तो बाबा को पसंद है ना सच्चाई, स्वच्छता। इसलिए बाबा ने कहा जैसे कहीं कथा हो रहा है, कोई लक्ष्मी का आह्वान करते हैं या किसी देवी का आह्वान करते हैं, देवता का आह्वान करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, स्वच्छता रखते हैं ना। तो ऐसे यदि हम भी बाबा को याद करते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, स्वच्छता, सच्चाई। जो भी हम हैं बाबा के आगे उसी रूप में प्रस्तुत कर देना है ना। और बाबा ने क्या कहा, ओके, है ना, ओके किसके लिए बाबा ने कहा, समाचार लिखने के लिए, हाँ, अगर किसी को कह दें कुछ अपना, कुछ दिल की बात हो, आपको कोई बात है, कोई समस्या है तो लिखो, तो समस्या का लेटर कितना बड़ा हो जाता है मालूम है, कहाँ कहाँ की समस्या होगी, परिवार की समस्या, सेंटर की समस्या, यहाँ की समस्या, लिखते ही जाएंगे, जितना भी लिखे वो कमी हो जाए, लगेगा भी ये भी बाकी रह गया है ना। तो बाबा ने इसीलिए क्या कहा, बाबा ने क्या लिखो, ओके, है ना, ओके अर्थात वो मिस हो गया बाबा, के मिस किंगडम, ये दोनों याद रहे, बस यही दोनों लिख देना है, बस ओके मतलब सब कुछ आ गया इसमें, है ना। और बाबा ने कहा आज कि बाप समान है ना, बाबा जैसा बनना है तो क्या करो, इसके लिए भी बाबा ने बहुत सहज तरीका बनाया बताया कि अगर बाप समान बनना है, बाबा जैसा बनना है तो क्या करो, कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो ये देखें कि इसी कर्म को यदि बाबा करेंगे तो कैसे करेंगे, बाबा कैसे करेंगे, है ना। तो ये हर बात में, तो बाबा ने एग्जांपल क्या दिया था इसमें, बहुत सहज एग्जाम्पल दिया था क्या, कि आप इसको कब कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ते उतरते भी ये सोच सकते हैं, ये एग्जाम्पल दिया था ना आज बाबा ने, कि सीढ़ी चढ़ते उतरते भी आप ये सोच सकते हो कि बाबा ये कैसे करते थे, चाहे बाबा कैसे करेंगे, तो ये कंपेयर करना। तो बाप समान बनना अर्थात, बाप समान बनना अर्थात, हाँ, कंपेयर करना, सीधी सी बात, ये बाबा ने जो आज विधि बताई, कंपेयर करना हर बात में, जैसे कंपेयर क्या करें, बाबा कैसे देखते हैं, देखेंगे बाबा कैसे बोलेंगे, अच्छा अभी हमारी किसी ने इंसल्ट कर दिया, तो अब उसने इंसल्ट कर दिया तो हम भी उसको इंसल्ट करेंगे ना, किसी ने हमारी 3 बार इंसल्ट कर दिया, तो 1 बार तो कम से कम कर सकते हैं ना, 1 बार भी नहीं। उसने मान लो 5-7 बार किया तो घर का मेंबर है तो बोल देंगे, बाकी लोग कहाँ के मेंबर है। तो हर बात में कंपेयर करना बाबा से, है ना। तो इस विधि से हम बहुत जल्दी बाप समान बन जाएंगे। तो हर कार्य में हम मैच करें केवल बाबा से। जैसे बाबा को दिखाते हैं, किसी ने बाबा को आके कहा, जो पांडव वन में आम का पेड़ है, कि बाबा बंदर आकर के जो है आम खा रहे हैं, तो भगा दें बंदरों को। तो बाबा ने क्या कहा मालूम है? बाबा ने कहा, बच्चे बंदर आम तोड़कर नहीं खाएंगे, तो क्या बाजार से खरीद के खाएंगे, है ना। तो ये भाव जो बाबा का है ना, बाबा कितना भाव है, तो ऐसी भावना हमारी भी रहती है। तो हर बात में ऐसे मैच करना। बाबा क्या कहते हैं, कोई गाली दे तो उसे क्या करो, गले लगाओ, है ना। बाबा को हम लोगों ने कितनी गाली दी, आधा कल्प से, और बाबा क्या कहते हैं, आप क्या हो, मेरे सिरताज हो, आप मेरे नैनों के नूर हो। तो ये भाव अगर हम हर आत्माओं के प्रति रखेंगे तो स्वतः बाप समान बन जाएंगे। हमारे हर संकल्प, बोल, कर्म सब बाप समान हो जाएगा। तो इस तरह से हम हर बात में बाबा से टैली करते चले तो बहुत सहज हो जाता है। और बाबा ने क्या बताया वरदान में, सदा शक्तिशाली किसे बनते हैं, मनन शक्ति। मनन शक्ति से क्या होता है, जब हम मनन करते हैं, ऐसे आप ऐसे याद करिएगा, केवल शब्दों को नहीं, मनन करते हैं कोई भी चीज को, तो मनन से क्या हो जाता है, अनुभवी, अनुभव। वो मनन किस में आ जाता है, अनुभव में। अनुभव से जब हम जो चीज अनुभव करते हैं, अच्छा अनुभव करेंगे ना, पावरफुल बनेंगे, शक्तिशाली सदा। खराब अनुभव करेंगे तो कमजोर। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताएं, जैसे इस समय जो प्राइम मिनिस्टर है ना मोदी, तो उनसे एक बार बच्चों ने पूछा था कि सर आप बचपन में कोई शरारत करते थे, उन्होंने कहा हाँ हम एक करते थे, लेकिन आप किसी को बताना नहीं, आप ऐसा नहीं करना, तब हम बताएंगे। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा जब उनके यहाँ शहनाई बजाने वाले आते हैं ना, शहनाई बजाने वाले, तो ये लोग क्या करते थे बच्चे, ये लोग इमली दिखाते थे। तो इमली दिखाने से क्या होता है ना, इमली देख के ना मुंह में खट्टापन जैसा हो जाता, स्वतः कोई इमली दिखाएगा, तो जब मुंह में खट्टा होगा ना तो शहनाई बजेगी नहीं, तो शहनाई वाले जो है दौड़ाते थे मारने के लिए, है ना। तो कैसे हो गया ये, देखो कहां केवल संकल्प किया ना, हम तो कहेंगे वो तो इमली वहां है, नहीं, उसको देखते ही मुंह में कैसा हो गया, खट्टापन, है ना। कोई भी, तो कोई भी बात है, ऐसे जब आप मनन करते हैं ना कोई चीज, आप थोड़ा लंबे समय तक उसको बार बार सोचो ना, तो वो जो मनन शक्ति है वही क्या हो जाएगी, अनुभव में आ गई, और अनुभव से क्या होगा, सदा शक्तिशाली। तो फिर बाबा ने बोला माया प्रूफ और विघ्न प्रूफ बन जाते हैं इससे, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा जैसे शरीर के लिए क्या जरूरी है, शरीर के लिए पाचन शक्ति। अगर पाचन शक्ति नहीं है अच्छा, तो आप कितना भी अच्छा भोजन करो, अगर डाइजेस्ट ही नहीं होता तो फिर वो तो काम नहीं करेगा ना। तो बाबा ने कहा जैसे शरीर शक्तिशाली, अगर शरीर को रखना है तो जैसे हमें पाचन शक्ति पर ध्यान देना, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या चाहिए, मनन शक्ति। तो जब हम बार बार मनन करेंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, अनुभव में आएगा वो, और जब अनुभव में आएगा तो हम शक्तिशाली बन ही जाएंगे। ठीक है। और खुशी के लिए बाबा ने क्या कहा? क्या होगा? तो इसके लिए भी बाबा ने क्या कहा है कि प्राण जाए, है ना, प्राण जाए लेकिन क्या नहीं जाए, शरीर छूट जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना टेंशन रहे हमारा कि कुछ भी हो गया हो गया, खुश रहना है, है ना। तो इतना हमारा खुशी के ऊपर अटेंशन हो। बाबा ने यहां तक कहा कि यदि कोई समस्या है, आपको लगता है इसको हम मिटा नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, अब जो हो गया हो गया, तो भी बाबा ने क्या कहा, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो क्या करो, कम से कम क्या करो, मुस्कराओ। कुछ नहीं कर सकते हो तो क्या करो, मुस्कराओ। मुस्कराना क्या है, हमेशा हो सकता है, आप हंसना, खिलखिला के हंसना भी वो हमेशा नहीं कर सकते, कभी कभी बिजली जैसी चमकती है ना, बिजली ऐसे चमकने जैसा होता है ना, थोड़ी देर आदमी खुश रख फिर, लेकिन मुस्कराना हमेशा चल सकता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि भले प्राण जाए चाहे कोई कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है आज की मुरली से? क्लियर? खुश रहना पॉसिबल नहीं होता है तो कहीं जैसे कुछ होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा फ्रूट है जो हर चीज यहां नहीं होता ना, एप्पल है, एप्पल सब जगह होता है क्या? एप्पल कहाँ होता है? ठंड कश्मीर में या ठंडे इलाके में। तो आपके यहाँ एप्पल नहीं तो आप एप्पल कहाँ से लाएंगे, कहाँ से मंगाते हैं? वहां से मंगाएंगे ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आपके पास खुशी नहीं है, अब आपको खुशी चाहिए, खुशी कहाँ से मिलेगी? कहीं बाजार में मिलेगी क्या? किस बाजार में मिलेगी, किसके पास है अवेलेबल? तो खुशी का सागर कौन है? बाबा। तो बाबा से कनेक्ट हो जाइए, बाबा के बारे में चिंतन करिए, बाबा से रूढ़ी हैं जो आज बाबा ने कहा ना, बाबा से संकल्पों बातें। तो संकल्प से संकल्प मिले, बाबा से अपने संकल्प से जोड़ा ना, तो स्वतः बाबा के सब कुछ किससे आएंगे, फिर आपके संकल्प भी स्वतः ऐसे हो जाएंगे, और जब श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो खुशी स्वतः आ जाएगी। नहीं, ये तो बहुत सहज इसका आंसर, ये कहने का अर्थ ये हुआ कि बाबा के जो सम्मुख थे ना साकार में, जैसे हम लोग अभी साकार में हैं, तो जैसे हम सभी आपस में साकार में सम्मुख बातचीत कर रहे हैं ना, लेकिन कुछ लोग यहां नहीं हैं, तो उनको जब हम याद करते हैं तो वो संकल्पों से याद करना, फिर हम आपको बताएंगे, आप उनको जाके उनको बताएंगे, तो ये हो गया संकल्पों का। हाँ, ब्राह्मण में मतलब आप समझिए कि जो बाबा के समय, साकार बाबा के समय आए, उनको समझिए मुख वंशावली। हम लोगों को भी बाबा ने याद किया, क्योंकि हम बाबा के सम्मुख तो नहीं आए ना साकार में, तो इसलिए हम भी संकल्पों की रचना हो गए। तो संकल्पों की रचना हम लोग हो गए। एडवांस पार्टी भी कई तरह के, उनके भी कई रोल हैं, कुछ जो स्थापना के निमित्त बनती हैं, कुछ पालना, तीनों तरह की एडवांस पार्टी भी है, वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप यही समझ सकते हैं कि किसी, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपना उनका सब पूरा हो गया, उनको सब कुछ आता है, तो क्या करते हैं, जो अच्छे बच्चे, कोई दूसरे कमजोर बच्चे हैं ना, उनको भी वो हेल्प करते हैं टीचर का, वो भी समझाते हैं किसी बच्चों को, उनका हो गया कोर्स पूरा, अब वो चाहे तो जा सकते हैं, आपका हो गया, लेकिन ऐसे बच्चे जो अपनी विशेषता को दूसरे के लिए भी यूज करते हैं, ये एडवांस पार्टी, उनका मार्क्स और भी बन जाता है, है ना, समझाए ना पहले, तो वो चूंकि पास हो चुके हैं, उनको डिग्री भी मिल चुकी है, लेकिन वो अभी भी अपनी विशेषताओं को हम सभी के लिए वो मददगार बन जाते हैं, उनकी भी मदद हमें संकल्पों के रूप में मिल जाती है। जी जी, तीनों तरह के एडवांस पार्टी, कुछ उसके लिए भी एक दो तीन तरह के रोल है उनके। ठीक है, बाकी अभी आप लोग जाएंगे, 10-15 मिनट के बाद फिर हाल में आ जाइएगा। फिर ओम शांति।